اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمیل اسپیشل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ نے جو سوالات ہمیں بھیجے ہیں کوشش یہی کریں گے کہ ہم ان کے جوابات آپ کو مہیا کرا سکیں. یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سوال و جواب کا، اس میں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو اطمینان بخش اور منافع بخش جوابات مہیا کرائے جا سکیں. لہذا آج ہم آپ کے سوالات کو لے کر چلتے ہیں اپنے محقق اور جن کی تحقیقات سے مسلسل ابھی تک مستفید ہوتے رہے ہیں. انشاءاللہ حسب سابق آج بھی ان کے جوابات سے استفادہ کریں گے. مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ ہمارا جو ای میل اسپیشل کا جو پروگرام یہاں پر چلتا ہے، اس میں بہرحال آپ کے جوابات سے استفادہ ہم لوگوں نے کیا، اور انشاءاللہ مسلسل اللہ نے اگر توفیق دی تو آنے والے زمانے میں بھی ہم آپ کے جوابات سے انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے. یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں. یہ علی جعفر صاحب لاہور سے پہلا جو ای میل بھیجتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے مسلسل پروگرام میں اس بات پر توجہ اور تاکید کی ہے کہ زندگی کامیاب ہونی چاہیے، ازدواجی زندگی، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ میری جو جاب تھی وہ چھوٹ گئی ہے، اور میرے اوپر اس وقت جو ہے مہنگائی کا اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے کہ میں نہ اپنے ماں باپ کو وقت دے پا رہا ہوں، اور نہ ان سے قاعدے سے بات کر پا رہا ہوں، اور نہ میں اپنے بیوی بچوں سے. اگرچہ اس کا کوئی زندگی سے لینا دینا عام طور پر نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنی مہنگائی اور میرے اوپر اتنا جسے اقتصادی پریشر بڑھا ہوا ہے کہ میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں. اب آپ مجھے راہ حل دکھائیں کہ میں اپنی اس بگڑتی ہوئی زندگی کو، جو کہ بہت بری طریقے سے میرے اوپر متاثر ہو رہی ہے، اس کو میں کیسے سنوار سکوں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. غالباً آپ نے فرمایا لاہور سے ہیں یہ.
جی، لاہور سے علی جعفر صاحب.
علی جعفر صاحب، پاکستان کی جو اس وقت بحرانی کیفیت
جی
اقتصادی حوالے سے، اور دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ویسے تو یہ بحرانی کیفیت پوری دنیا میں
جی،
لیکن پاکستان میں خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ دن میں مہنگائی ہو جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں
جی.
اور صرف یہ جعفر بھائی تنہا نہیں ہے
جی،
وہ اپنے آپ کو تنہا اس میں محسوس نہ کریں. اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ، اس میں اور بھی لوگ ہیں، اور بھی لوگ بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں. یہاں پر جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں
جی،
ٹھیک ہے. اب ایک زندگی میں سخت وقت آ گئے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، اور بھی پاکستان میں تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں
جی.
اب وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ایک مرحلہ ہے آپ کا کہ آپ جستجو کرتے ہیں، آپ اپنی صحیح کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور نوکری مل جائے. یقیناً وہ اس کے لیے اقدام کر رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق نوکری ملے جس پر ہم تھے، اور اس سے کم میں اگر مل رہی ہوتی تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن ایسی بحرانی کیفیت میں جو پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے، اگر انہیں کوئی ایسی نوکری مل جاتی ہے فی الوقت کہ جو ان کی اس اسٹیٹس کی اگر نہ بھی ہو، اگر اس سے کم کی بھی ہو، تو وہ اس کو غنیمت جانے. کیونکہ آج کل تو لوگ ایک آدمی سے تین تین آدمی کا کام لے رہے ہیں
جی.
تو اس حوالے سے یہ کوشش کریں، اگر ان کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی ہنر ہے، اس سے کمانے کی کوشش کریں
جی.
گھر کے افراد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں. اگر گھر کا کوئی فرد اس قابل ہے کہ کچھ کما سکتا ہے، کوئی پاکٹ منی اپنا نکال سکتا ہے
جی.
کوئی کسی طرح سے کوئی ارننگ کر سکتا ہے، تو اس کو شامل کر لیں
جی.
نہ کہ گھر والوں سے یہ علیحدہ اپنے آپ کو سمجھے کہ سارا بوجھ ان کا اپنے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ گھر کے فرد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسی حالت میں جہاں ملک میں بحرانی کیفیت ہوتی ہے، تو سب کو مل بانٹ لینا چاہیے بوجھ
جی. ہاں، ابھی تو عالم یہ ہے کہ ایک ایک نوکری کے پیچھے سینکڑوں لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں
جی. ہاں
جی،
تو ایسی صورتحال میں یہ مایوس کن صورتحال ہے نا
جی.
یہ ایک بحرانی کیفیت ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے. یہ کالے بادل کی طرح سے جو پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے
جی.
کچھ عرصے رہے گی، اس کے بعد پھر چلی جائے گی
جی.
اب اس دوران ہمیں صبر و تحمل، خداوند عالم سے جو ہے وہ اپنے رابطے کو مزید اچھے کرنے کی ضرورت ہے
جی.
مثال کے طور پہ سورہ واقعہ اگر وہ روزانہ پڑھے مغرب کی نماز کے بعد، تو خدا ان کے لیے رزق کا کوئی اور ذریعہ فراہم کر دے گا. اسی طرح مفاتیح الجنہ میں مختلف دعائیں ہیں رزق کے لیے کہ جی. خداوند عالم کس طریقے سے ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے. ملک سے باہر جا سکتے ہیں، ملک سے باہر جائیں، شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا سکتے ہیں جہاں ان کو نوکری مل سکتی ہے، وہاں چلے جائیں. یعنی کوئی نہ کوئی اسٹیپ وہ لینا شروع کریں
جی.
तो ये बोरानी कैफियत
यानी
से
पहली मंजिल पर यह है कि बहरहाल इस मुश्किल से निकलने की कोशिश करें जिस
कोशिश
हद तक
करें
हो सके।
जिस हद तक हो सके,
जी
दूसरों को अपने साथ उसमें मिलाएं कि
जी
आपके घर वाले भी कुछ शेयर करें,
जी
सब मिलकर ही अपने आप को बचा सकते हैं
ताकि इन मुश्किलात में सब
मुश्किलात।
तकरीबन बांट लें ताकि एक इंसान के ऊपर उतना ज्यादा
हाँ,
प्रेशर
क्योंकि
ना
वो
आ
अपने
सके।
आप को अकेला महसूस कर रहे हैं ना इस
जी
वक्त, ये अकेलापन उसे महसूस होता है जब घर वाले भी इनके ऊपर ही पूरा पूरा डिपेंड करना
जी
शुरू हो
हाँ
जाएं। हमारे माशरे में बहुत सारे छोटे छोटे हुनर ऐसे हैं कि अगर घर के कुछ अफराद करना शुरू कर लें तो वो कमाई का जरिया बन जाते हैं।
जी हाँ
मैं कुछ अर्से पहले एक फैमिली से मिला, तो उनके भी घर में एक कुछ मसाइल थे,
जी
तो वो खातून जो थी वो स्टिचिंग का काम जानती थी, टेलरिंग का काम जानती थी, लेकिन वो करती नहीं थी। लेकिन जब उनके शौहर के साथ
ये मुश्किल जी
मुश्किल मुश्किल पेश आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने बुटीक का काम, टेलरिंग का काम शुरू कर दिया और जो है वो उससे काम आमदनी उनकी शुरू हो गई,
जी
ठीक है ना। इसी तरह उनके बच्चों को स्किल्स आती थी, उन्होंने कंप्यूटर में बच्चे उनके एक्सपर्ट्स थे
जी
तो उन्होंने अपने बच्चों के जरिए काम लेना शुरू कर दिया, वे कंप्यूटर में जो भी टाइपिंग का काम है, दूसरे काम है, वो उन्हें लेना शुरू कर दिया। यानी घर के सारे हर अफराद जो है
जी
वो
हर फर्द जो है आपस में मिल बढ़ के काम करने लगे ताकि एक इंसान उस बुहरानी कैफियत से
बस,
बाहर निकल
तो
सके।
दुआ और तवस्सुल अपनी जगह और
जी और
कोशिश और
अपनी
सही
मेहनत
अपनी
जी
जगह, इंशाल्लाह इस बुहरान से निकल जाएंगे।
इंशाल्लाह जी। तो ये बहरहाल कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बहरहाल इंसान फौरी तौर पर इन किसी मुश्किलात में मुब्तला हो जाने के बाद घबरा जाता है अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ ना आए तो।
जी हाँ
लेकिन बहरहाल जब दूसरों का सहारा मिलता है
जी हाँ जी
और
हाँ
इंसान खुद अपने आप को अल्लाह से लो लगाता है और वो अपनी दुआओं में इजाफा करता है तो दिल को सुकून मिल जाए, बाकी सारी चीज़ें तो मिलती रह
मिलती रहती
जाएंगी
है इंशाल्लाह।
जी। ये बहरहाल इंशाल्लाह हमारे अली जाफर साहब को परवरदिगार उनकी रोजी में इजाफा करेगा और उनको इस मुश्किल
इंशाल्लाह
से बाहर
इंशाल्लाह
निकालेगा। ये दूसरा सवाल हमारे सकीना का है, ये हिंदुस्तान बेंगलोर से इन्होंने ये सवाल भेजा है और ये कहती हैं कि हमारे शौहर घर में बैठते हैं और वो जैसे दुनिया के तमाम शौहर अपने बच्चों के लिए रिस्क और उनके लिए माश का इंतज़ाम करते हैं और कोशिश करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते बल्कि उनकी तवक्कुआत अपने बच्चों से और मुझसे है कि हम लोग बाहर जाएं और जाकर उनके लिए रिस्क का इंतज़ाम करें। ऐसे सूरत में आप उनके लिए क्या नसीहत करना चाहेंगे?
जी हाँ, बाज़ार तो ये बात इससे जाहिर ही हो रही है कि वो घर बैठ गए,
जी
कमा नहीं रहे, और अगर कोई शरई उज़ नहीं है उनके पास, यानी कोई शरई दलील नहीं है,
जी
तो फिर तो इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है ना कि घर वालों के रिस्क का इंतज़ाम करना।
जी हाँ
अब देखिए, इससे पहले वाला जो ईमेल था ये भी इसी तरह का था कि ये कोशिश कर रहे थे
जी
लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल पा रही
जी लेकिन बच्चों से
और
मुतालबा नहीं किया
बच्चे
वहां
से
पर
मुतालबा नहीं किया, ये बरअक्स है, ये घर
जी
में आके बैठ गए और बच्चों से मुतालबा करें, बीवी से मुतालबा करें, तो
जी
शरण ये सही अमल नहीं है।
जी
अगर इनके पास कोई शरई उज़ नहीं है तो ये नहीं कर सकते ये कि बीवी बच्चों को कह के तुम लोग कमा के लो,
जी
बल्कि इनको खुद निकलना चाहिए, खुद जस्तजू करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इनकी ज़िम्मेदारी है ना, नफका जो है वो बीवी बच्चों का वो बाप की ज़िम्मेदारी होती
जी
है, तो इनको हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो निकलें और काम करें और अपने जितना भी कमा के ला सकते हैं वो लाएं। बिल्कुल ये शरण सही नहीं ना, इनके ऊपर नफका वाजिब है, तो अगर ये नहीं करेंगे तो ये गुनाह कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, दुनिया में भी और आखिरत में भी जवाब दें।
जी
माशरा भी ऐसे शख्स को, ऐसे मर्द को पसंद नहीं करता
जी
कि जो घर में बैठा रहे और हड़ हरामी करे और जो है वो बी बच्चों को जो है काम पे लगा दे। अगर कोई मजबूरी है शरी तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं तो ये तो बिल्कुल जायज़ काम नहीं है
जी
और
आमतौर पर
ताकि
मौलाना माजद के साथ एक मुश्किल जो हमारे माशरे में वो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर शौहर और बीवी दोनों काम कर रहे होते हैं और शौहर अगर खुदा न खास्ता जिसे हमारे काहिल मिजाज कहते हैं, सुस्त मिजाज है, वो इन सब चीज़ों का मारा हुआ देखता है कि हमारी बीवी अब काम करने लगी है तो कोशिश करता है कि खाना नशीन हो जाए और बीवी के ऊपर जोर डाले कि वो कमा के लाए।
लेकिन बाज़ माशरे में तो ये कल्चर है,
जी
बाज़ माशरे में ये कल्चर है कि मियाँ बीवियों को भेजते हैं काम करने के लिए।
जी
लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका होता है, समझदार लोग होते हैं, तहजीब याफ्ता लोग होते हैं, वो इस तरह तो नहीं करते ना कि अपनी
जी
बीवी को
कमाने के लिए
कमाने के लिए
भेजें
भेजें, खुद घर में बैठे। ये तो असलन मर्दानगी पे अफसोस हो रहा है कि ये किस किस्म के मर्द हैं कि जो बिला वजह घर में बैठ गए।
जी
अगर इनकी बेगम इस तरह फरमा रही है कि बीवी बच्चों को लगा रहे हैं काम पे,
जी
तो कोई कोई ना कोई गलत इनके जहन में फिक्र आ गई है, कोई
जी
गलत बात बैठ गई जिसकी वजह से वो इस तरह के अमल कर रहे हैं।
जी
हो सकता है वो बीवी बच्चों से परेशान हो, उनको तंग करना चाह रहे हैं, बदला लेना चाह रहे हैं। बहुत
जी
सारे लोग इस तरह के काम भी करते हैं कि जब बीवी बच्चों से बेजार हो जाते हैं तो खुद एक जगह बैठ जाते हैं और फिर बीवी बच्चों को लगाते हैं काम पे कि आप तुम लोग करो, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहुत अजियत दी है, बहुत तकलीफ दी है। बहुत सारे असरात होते हैं, यानी एक पहलू तो ये निकल रहा है, दूसरा पहलू ये भी निकलता है। बाज़ दफ़ा लोग इस तरह करते हैं कि मैंने अब बहुत कमाया, बहुत खिलाया और तुम लोगों ने मेरी कदर नहीं की, मेरी इज्जत नहीं की, अब तुम लोग की बारी।
जी
हालांकि ये सही अमल नहीं है, ये एक
जी
मंतिकी अमल नहीं है, ऐसा
जी हाँ
नहीं
हो
करना
सकता है
चाहिए।
समझाने के लिए ऐसा कर रहे हो कि पैसे की तुम्हारी नज़र में कोई कदर
जी
नहीं,
हाँ
हम
जी हाँ
कमाते हैं मगर तुम्हें कदर नहीं है,
जी
जाओ अब 1 रुपए कमा के देखो
कमा के
कितनी
देखो,
मेहनत से कमाया जाता है
बिल्कुल ऐसे ही
ताकि अपनी ज़िंदगी को
बस, अब
अच्छी
इस तरह
तरह
होता है।
जी।
जी
तो बहरहाल इनका ये अमल भी बच्चों को घर से बाहर कमाने के लिए भेजना, खुद घर में बैठकर खाने की कोशिश करना, बहरहाल शरी
ना शरीर ना
जवाज नहीं
अखलाकी
रखता। और अखलाकी तो
माजरे,
बहरहाल, तो इंसानी तो है ही है कि,
बिल्कुल
तो बहरहाल इनको ये काम नहीं करना
नहीं
चाहिए।
करना चाहिए।
और इंशाल्लाह ये हमारे जो आपने जवाबात दिए हैं, और इंशाल्लाह इनसे ये मुस्तफीज होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक मर्द के तरीके से जीने की कोशिश
जीने कोशिश
करेंगे।
करें।
ये अगला सवाल हमारा कराची से मोहम्मद हुसैन साहब यहाँ पर तहरीर फरमाते हैं, और ये कहते हैं कि मेरी एक मुश्किल जो तकरीबन एक सख्त मुश्किल है, जिस मंजिल पर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, वो ये है कि जब भी मैं अपनी बीवी से किसी काम को करने को कहता हूँ तो बजाय उसके कि वो जी और जनाब से काम ले, साफ इनकार कर देती है और वही करती हैं जो उनका अपना दिल चाहता है। आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है? अगर वो एक मुसलमान हैं तो क्या वो मेरी इताअत न करें जबकि मैं अपनी बात में सही भी हूँ?
जी,
जी
अच्छा, यहाँ पे जो बात बज़ाहिर है वो यही है कि सरियन इनकार कर रही हूँ
जी
हर
हाँ
बात का। तो एक एहतमाल ये होता है कि शादी जो है वो पसंद से नहीं हुई है,
जी
यानी खातून को ये रिश्ता मंजूर ही नहीं होगा। अब जब घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी होगी तो अब वो उसका बदला ले रही होंगी। पहला मरल तो ये हो गया कि या तो इनकी शादी की स्टार्टिंग में ही ये प्रॉब्लम।
जी
दूसरा मरहला ये हो गया कि शौहर की पर्सनालिटी को इन्होंने कबूल नहीं किया, यानी शादी के वक्त कोई मसला नहीं था लेकिन शादी के बाद उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोच, उसकी फिक्र इनके मुताबिक नहीं थी।
जी
हो सकता है कि मिसाल के तौर पे ये खातून सोशलाइजिंग इनके अंदर हो,
जी
कैरियर ओरिएंटेड हो,
जी जी
अपने आप को किसी माशरे का एक एक्टिव फर्द देखती हूँ, शौहर
जी
इस तरह का पसंद ना करता हो,
जी
तो जाहिर बात है वो क्लैश होगा ना, मुखालिफत होगी। और ये अपने आप को यकीनन कवी पा रही होंगी अपने शौहर
जी
से किसी भी हवाले से, तो ये अब उनका कहना नहीं मानती। बस अक्सर इंसान ये उस वक्त करता है जब सामने वाले की शख्सियत को वो नहीं मानता, अपनी शख्सियत को वो ज़्यादा बढ़तर समझता है, दूसरे को अबतर समझता है,
जी
तो इस किस्म के अमल अंजाम देता है। तो ये अमल शरण तो सही नहीं है,
जी
क्योंकि बीवी की जिम्मेदारी ये है कि वो शौहर की इताअत करे,
जी अगर वो नानो नफ़े का बहरहाल इंतज़ाम कर रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी के
अपनी
तहत करे।
जिम्मेदारी है ना। अच्छा, मुखालिफत जो वो कर रही है ना, तो ये अखलाकी तौर से सही है ना शरई तौर से सही है।
जी
अगर कोई जायज़ बात भी है, अव्वल तो वो कहना है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूँ कि जो जायज़ ना हो,
जी
लेकिन अगर वो मुखालिफत कर रही है तो ऐसी खातून, क्योंकि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बताया था कि ये फरिश्ते जो हैं ऐसी खवातीन पर
लानत
लानत
करता।
करते हैं क्योंकि ये शौहर की जो है वो नाफरमानी करती। फिर ये खुद ज़िंदगी में अपनी कामयाब नहीं होंगी, सुकून नहीं मिलेगा इन्हें,
जी
क्योंकि किसी को दुख दे रही होंगी,
जी उसके अलावा ज़हनी तौर पर हमेशा मुस्तरिब रहेंगी ये।
मुस्तैद रहेंगे, मोहब्बत नहीं मिलेगी। जब
जी
शौहर से मोहब्बत नहीं मिलेगी, तवज्जो नहीं मिलेगी, तो खुद परेशान हो जाएगा इंसान।
जी
फिर इनकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब होने लगेगी, अगर बच्चे हो जाएं तो वो और एक और डिस्टर्बेंस।
जी
इसको वो अना का जंग नहीं बनाए, इसको वो इस तरह का अमल ना करें कि जिससे दीन भी उनको
जी
ताकीद करे कि ना करे, माशरा भी नहीं चाह रहा, शख्स भी नहीं चाह रहा। तो ये एक, अगर शख्स अच्छा इंसान है और वो दीन की सही बातें कह रहा है और ये सिर्फ मुखालफत पर उतर आई है, तो ये एक असलन गैर इंसानी अमल है।
जी
इंसान जो है वो अगर किसी से हमफिक्री नहीं होती तो उससे तवाफुक करता है,
जी
ठीक है ना, उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ना ये कि वो इनकार और मुखालफत पर उतर है, मगर ये कि उसके साथ कोई जुल्म हुआ। बस ऐसा भी होता है कि शौहर नहीं तो उसके घर वाले कोई और उस पर जुल्म करता है, तो वो पलट कर किसी और से बदला लेती है खातून कि इनका बदला मैं इनसे लूंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं,
जी
यानी बाहर ये एक स्टेटमेंट है लेकिन इसके पीछे क्या क्या हो रहा है
जी
वो
ये तो
हमें
किसी
देखना
को नहीं
होता
पता।
है।
जी
तो बाज दफा लोग या तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं या बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं।
जी
एग्रेसिव होने का मकसद ये होता है कि वो अपने उन ख्वाबों को, कि जो उन्होंने शादी से पहले सोचा हुआ होता है, उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए वो सारी चीजों की मुखालफत करके अपनी बात को मनवाने। क्योंकि बाज दफा तरबियत भी ऐसी की जाती है ऐसे फैमिलीज के जो बिल्कुल आजाद ख्याल होते हैं,
जी
बच्चों को कोई रोक टोक नहीं रखते,
जी
उनकी हर ख्वाहिश को माँ बाप पूरी करते हैं ये सोच के कि हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, और मोहब्बत का तकाजा ये है कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए,
जी
अगर हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास सब कुछ है। तो ये बच्चे आदी हो जाते हैं अपनी बात को मनवाने के, फिर
जी
वो बचपन से क्योंकि मनवाते आते हैं, तो शादी के बाद भी वो अपने शौहर को भी अपनी बात मनवाने के लिए वो सारे काम
कोशिश
करते
करते
हैं,
हैं हर तरीके से,
हर
जिस
तरीके से
तरीके से भी हो
मनवाए, जिस
सके।
तरीके से हो सके। तो जब आखिरी हरबा क्या रह जाता है कि जबरदस्ती जोर।
जी
तो ये तो एक चैलेंज कर रहे हैं आप, इंसानियत को जेरे सवाल लेके जा रहे हैं,
जी
और इनसे ये मतलूब नहीं है खातून होने के नाते, ये अच्छी खातून होने के नाते ये असलन तवक्को
नहीं
नहीं है
बहरहाल
इनसे।
खुद इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, और सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं और आने वाली नस्ल की भी
ज़िंदगी
ज़िंदगियां
ख़राब करें,
ख़राब हो जाएंगी।
ना खुदा खुश है,
जी हाँ
ना माशरा खुश है, ना घर वाले खुश है, तो इंसान कैसे जीना चाह रहे हैं
जी
इसमें?
हाँ, ना दुनिया में वो इंसान अच्छा रह सकता है और ना ही
ना
अल्लाह के
आखिरत
पास। तो बहरहाल ये मुश्किल है और इंसान को सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं शायद उनकी नज़र में भी अच्छा ना होगा,
जी
चूंकि बहरहाल इंसान को कभी कभी बदले इंतकाम का तरीका, जो आपने शुरू से इस
जी
बात पे वो रोशनी डालना शुरू किया है कि
जी
मकसद तक पहुंचना हर इंसान का कमाल है,
जी
लेकिन
हाँ,
सबसे अहम चीज़ है हमारा रास्ता कौन सा है।
रास्ता कौन सा?
आप अपनी बात को ज़रूर करें लेकिन बहरहाल रास्ता हमारा अच्छा होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये बहरहाल मोहम्मद हुसैन साहब की अहलिया, एक नरमी का बर्ताव और अपनी बात मनवाने का एक बेहतरीन तरीका अपने शौहर को अपने जज्ब करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
जी
ये अगला सवाल है जैनब का फैसलाबाद से, और वो यहाँ पर हमें ईमेल भेजती हैं और वो ये कहती हैं, जैसा कि शौहर ने मेरे शादी से पहले जो चीज़ें मुझे दिखाई या जो वादे या मसलन जो चीज़ें उन्होंने मेरे अपने बारे में हमारे घर वालों से बताई वो सारी की सारी बातें झूठी थी। और जब मैं शादी होकर उनके यहाँ गई तो जो उन्होंने कहा था कि इतनी ज़मीन है इतनी जायदाद है आज उनके पास कुछ नहीं है, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का तस्करा किया उसके एतबार से वो पूरे नहीं उतरे और जो वादे उन्होंने किए थे सब के सब झूठे निकले। इन तमाम झूठों की वजह से अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनके साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारूं, मैं उनसे जुदा होना चाहता हूं, आप मुझे नसीहत करें।
जी एक बहुत ही वाकई अफसोसनाक बात है कि एक इंसान जो है वो एक बहुत अच्छी बुनियाद,
जी
जो शादी है बहुत अच्छी बुनियाद है
जी
जिस पर हमने पूरे प्रोग्राम्स बेस किए हैं कि सच की बुनियाद पर, एतमाद की बुनियाद पर इस ज़िंदगी को उस्तवार किया जाता है और कमाल तक पहुंचा जाता है, और जिसकी बुनियाद में अगर झूठ डल जाए,
यानी बुनियादी खोखली है उनकी।
बुनियादी गलत है ना,
जी
और झूठ जो है तमाम फसाद का जड़ है,
जी
तो ये ज़िंदगी में जो फसाद और मुश्किलात पेश आएंगी वो इसी वजह से आना शुरू हो गई हैं क्योंकि इन्होंने झूठ बोला। तो ऐसी शख्सियत, असल में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसे
जी
मामलात में,
अपनी हकीकत बयान करिए।
हकीकत बयान करें, और अगर आपको कोई बात कहनी भी है तो उसको एक अच्छे अंदाज से बयान करें, लेकिन बिल्कुल झूठ बोल के आप उस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं तो ये असल शरण ये गलत अमल है।
जी
लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है कि ठीक है ये झूठ आया हो गया, लेकिन घर वालों को भी तहकीक करनी चाहिए थी, ठीक है ना।
जी हाँ, पहले
अगर
जिम्मेदारी लड़की वालों की थी।
लड़की वालों की जिम्मेदारी थी कि वो तहकीक तो करें, अगर एक शख्स झूठ बोल रहा है तो हर इतने सारे झूठ बोलकर अगर उसने शादी कर ली है तो आप एक झूठ तो पकड़ लेते,
जी
कुछ ना कुछ तो वेरिफिकेशन तो की जाती है ना। देखिए माँ बाप को ताकीद यही है, आज के दौर में भी ऐसे ही है क्योंकि ज़माना एक और डगर पर चल पड़ा है,
जी
आपको एहतियात करने की ज़रूरत है हर कदम पर। तो जब भी कोई रिश्ता ऐसा मांगने और अपने बारे में इस तरह से बात करेगा तो आप उसको वेरीफाई करें कि ये सही भी कह रहा है या नहीं कह रहा,
जी
हकीकत है या नहीं है। तो अगर शादी हो गई है और वो ये तीन चार बातें हैं, फर्ज करें वो शख्स ने
जी
वादा किया था वो नहीं है, ठीक है अब नहीं है, आया उस शख्स के अंदर कोई खूबी मौजूद है या नहीं है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान झूठ बोलता है, कस्ट उसका ये नहीं होता है कि वो नुकसान पहुंचाए,
जी
कस्ट उसका ये होता है, इरादा उसका ये होता है कि वो उस चीज़ को हासिल कर ले,
जी
लेकिन अगर ये बात खुल गई तो वो पशेमान होता है। अगर वो पशेमान है अपने इस अमल पर और वो शख्स अच्छा है,
जी
ठीक है उसने झूठ बोला ठीक है, लेकिन उसका बाकी ज़िंदगी का अमल अच्छा है, वो अच्छा शौहर होने की कोशिश कर रहा है, उनको और मसाइल खड़े नहीं कर रहा ज़िंदगी में, तो फिर इसको दरगुजर किया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में बताया कि आप माफ़ कर दें,
जी
आप दरगुजर करें, तो ये इंसानी अमल जो है वो यही है कि वो अगर ये देखे कि भाई ठीक है इन्होंने झूठ की बुनियाद पर शादी की थी लेकिन इस शख्स के अंदर अच्छी बातें मौजूद हैं,
जी
खूबियाँ मौजूद हैं, कोई ना कोई खूबी तो होगी ना। इसी तरह उनके घर वाले भी अगर पशेमान है अपने उस अमल पे क्योंकि वो चाहते थे कि ये दुल्हन को घर ले आए, इस लड़की को दुल्हन बना के अपने घर लाएं, तो अगर मुश्किलात खड़ी नहीं कर रहे और अज़ियत नहीं दे रहे, जुल्म नहीं कर रहे, तो उसके साथ रहा जा सकता है, दरगुजर किया जा सकता है। खुदा आपके लिए रोज़ क़यामत आपको वो कुछ अता करेगा।
लेकिन बहुत बहरहाल सख्त है ये
ये सख्त
मंजिल
है,
कि बहरहाल जिस चीज़ की बुनियादी झूठ पर टिकी हुई हो।
ये बुनियाद ठीक है झूठ पर है, लेकिन अब हकीकत सामने आ गई ना, अब आप हकीकत को देख लें,
जी
इस हकीकत में क्या हकीकत है? अगर ये हकीकत है कि वो शख्स पशेमान है, उसने हासिल कर लिया, अब वो पशेमान हो रहा है कि मैंने गलत बुनियादों पर आपको हासिल किया, तो ठीक है इंसान गलती करता है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर वो जुल्म कर रहा है इसके बावजूद, तो फिर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसके साथ रहें, क्योंकि एक तो झूठ की बुनियाद भी डाली, ऊपर से वो जुल्म भी कर रहा है।
जी
लेकिन अगर इस ये इन्हीं बातों के बरअक्स, यानी ये झूठ अपनी जगह, लेकिन अब वो शख्स अच्छा है, वो कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है, मोहब्बत देना चाह रहा है, मोहब्बत करता है बीवी से, बच्चों से, सबसे, सब लोग अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, तो आप गुजार लें। इसको अब इतना बड़ा इशू ना बनाए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको एक ज़िंदगी बेहतर मिल रही है।
जी
बहुत सारे लोग हैं जो सच बोलकर शादी करते हैं
जी,
लेकिन उनके अंदर ज़र्फियत नहीं होती
जी,
कि वो अच्छी चीज़ को रख अपने साथ चला सकें, अच्छी चीज़ की कदरदानी उनकी कर सकें। तो ऐसे सूरत हाल में आपको दीन मुबीन ने सिखाता है कि ठीक है बुनियाद गलत डाली, लेकिन अगर अब सूरत हाल बेहतर है, शख्स सही है, तो आप जिंदगी को
जी,
आगे चलाएं।
यानी आपके कहने का और जवाब का मतलब ये है, बहरहाल कोशिश ये करें कि बहरहाल दोनों आदमी मिलके अपनी जिंदगी को आगे बढ़े, ताकि बहरहाल दूसरे घर वालों के ऊपर और खानदान वालों के ऊपर मुश्किल आती जात ना। बहरहाल अब वक्त खत्म हो गया, लिहाजा हम अपनी बात को आगे और आगे सवाल जो है आपको सामने पेश नहीं कर सकते हैं, लिहाजा यहीं पर अपनी बात को रोकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम आपके सामने फिर अपने अपने नाज़रीन के सवाल पेश करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था आपके सवाल का जवाब, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद यही है कि आप इससे मुस्तफ़ीज होंगे और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह आपके सवालात हम तक आते रहेंगे, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनके नफा बख्श और इंशाल्लाह ऐसे जवाबात आपको दिलाते रहेंगे जिनसे आप फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो आप अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान शबील अब्बास को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।